एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी संस्था पर बात करने वाली हूँ जिसका जिक्र हम लगभग रोज सुनते हैं, खबरों में देखते हैं, पर सच कहूँ तो कई बार ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि असल में करती क्या है और क्यों इतनी अहम है।
जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की।
बिल्कुल, और देखिए आज के समय में जब दुनिया इतनी जुड़ी हुई है, यूएन को समझना तो और भी जरूरी हो गया है। अब सोचिए, कोरोना जैसी महामारी आई या ये क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है, शरणार्थियों का संकट है, देशों के बीच तनाव, ये सब ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे कोई एक देश अकेले तो निपट ही नहीं सकता। तो ऐसे में यूएन जैसी एक ग्लोबल संस्था की क्या भूमिका है, मतलब ये कितना कामयाब है और कहां कह सकते हैं अटक जाता है?
हाँ, यही सब सवाल है और इन्हीं के जवाब ढूंढने के लिए आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे जो सीएम हानिमाकी की किताब यूनाइटेड नेशंस अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के सहारे। ये किताब यूएन की कहानी को, मतलब उसके काम करने के तरीके को, काफी दिलचस्प और आसान भाषा में समझाती है।
जी, और लेखक का जो बैकग्राउंड है वो भी काफी मायने रखता है। जुस्सी हानिमाकी, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर हैं। और जिनेवा तो आप जानते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, ग्लोबल डिप्लोमेसी का सेंटर कह सकते हैं।
सही कहा। तो उन्हें यूएन और जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके कामकाज को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है, लेकिन वो देखते एक इतिहासकार की नज़र से हैं, एक बाहरी व्यक्ति की तरह। उनकी विशेषज्ञता, जैसे आपने कहा, कोल्ड वॉर और अमेरिकी विदेश नीति में है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि वो यूएन को सिर्फ आज के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि उसके पूरे सफ़र को देखते हैं, शुरुआत की उम्मीदें, रास्ते की मुश्किलें, सब कुछ।
हाँ, और जैसा आपने कहा, वो ना तो बस यूएन की तारीफ करते हैं ना ही उसकी बुराई। एक बैलेंस्ड नज़रिया है उनका। वो एक यथार्थवादी इतिहासकार जो हमें दिखाते हैं कि यूएन के जो ऊंचे आदर्श हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें हमेशा एक एक तरह की खिंचतान चलती रहती है।
बिल्कुल, तथ्यों और एनालिसिस के साथ वो यूएन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको सामने रखते हैं।
तो ये किताब असल में करती क्या है? ये हमें सिर्फ उन हेडलाइन से आगे ले जाती है जो हम पढ़ते हैं कि अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल में ये तय नहीं हो पाया या फलां जगह पीसकीपिंग फोर्स भेजी गई। ये यूएन के पूरे स्ट्रक्चर को, उसके ताने बाने को समझने में मदद करती है। कैसे बना, अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं, दुनिया पर असल असर क्या है।
हाँ एकदम, किताब हमें एक ऐतिहासिक सफर पर ले जाती है। शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब यूएन बना, और इससे पहले जो लीग ऑफ नेशंस था वो क्यों फेल हुआ, उससे क्या सबक लिए गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हानिमाकी उन शुरुआती समझौतों पर, और कह सकते हैं उन मजबूरियों पर रोशनी डालते हैं जिन्होंने यूएन का भविष्य तय कर दिया।
आप शायद सुरक्षा परिषद और वो जो वीटो पावर है उसकी बात कर रहे हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल वही। पांच बड़े देश, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, यानी P5, इनको वीटो पावर मिली। मतलब कोई भी एक देश किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। ये आज भी एक बड़ा विवाद का मुद्दा है, लेकिन हानिमाकी समझाते हैं कि ये शायद उस वक्त की एक पॉलिटिकल ज़रूरत थी, एक तरह का समझौता था, ये पक्का करने के लिए कि ये बड़ी ताकतें सिस्टम के अंदर बनी रहें, उसे छोड़कर न चली जाएं, जैसा लीग ऑफ नेशंस के साथ हो गया था।
हाँ, और इस एक फैसले ने यूएन की ताकत और उसकी सीमाएं दोनों को जैसे हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया।
बिल्कुल।
तो किताब यूएन के इसी बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ती है। एक तरफ तो ऊंचे लक्ष्य हैं, दुनिया में शांति, मानवाधिकार, गरीबी उन्मूलन, और दूसरी तरफ हर सदस्य देश के अपने राष्ट्रीय हित हैं, अपनी सॉवरेनिटी है, मतलब वो अपने अंदरूनी मामलों में दखल नहीं चाहते।
जी,
हानिमाकी का तर्क यही है कि यूएन एक ज़रूरी मंच है, एक टूल है, पर इसकी कामयाबी सदस्य देशों की पॉलिटिकल विल, खासकर पावरफुल देशों की मर्जी पर निर्भर करती है। ये कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है।
सही कहा, और ना ही उसे वैसा बनाने का इरादा था।
चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यूएन के अलग अलग हिस्से काम कैसे करते हैं। इतिहास से शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, लीग ऑफ नेशंस की नाकामी से सबक लिया गया। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में चार्टर साइन हुआ। लक्ष्य बड़ा था, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाना।
लेकिन देखिए, बनते ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ की सीधी दुश्मनी, और इसका सीधा असर पड़ा सिक्योरिटी काउंसिल पर। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीटो इस्तेमाल करने लगे। नतीजा, काउंसिल अक्सर किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पाती थी।
मतलब जिस बॉडी को दुनिया में शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली, वही दो सुपर पावर के झगड़े में फंस गई।
हाँ, और ये दिखाता है कि यूएन हमेशा से ही एक तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अखाड़ा रहा है। जब सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था, तब यूएन ने दूसरे कामों पर फोकस करना शुरू किया, जैसे पीस कीपिंग मिशन भेजना।
हाँ, ये पीस कीपिंग वाली बात दिलचस्प है। मैंने पढ़ा कि इसका जिक्र चार्टर में सीधे तौर पर है भी नहीं।
नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से कह सकते हैं ईजाद किया गया एक तरीका था, परिस्थितियों के हिसाब से ढलना। और इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन यानी दुनिया भर में औपनिवेशवाद खत्म करने में भी यूएन ने, खासकर जनरल असेंबली ने, एक अहम रोल निभाया।
अच्छा, अब जरा यूएन के एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं। हानिमा की तीन मुख्य किरदारों का जिक्र करते हैं, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटेरिएट और बजट। सेक्रेटरी जनरल तो यूएन का चेहरा होते हैं, दुनिया के टॉप डिप्लोमैट। कुछ सेक्रेटरी जनरल जैसे डैग हैमरशोल्ड का नाम लिया जाता है, उन्होंने इस पद को काफी एक्टिव और प्रभावशाली बनाया।
जी हाँ, उन्हें तो सेक्युलर पोप तक कहा गया है, एक नैतिक आवाज।
फिर है सेक्रेटेरिएट। ये हजारों इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स हैं जो यूएन का रोजमर्रा का काम संभालते हैं, एक तरह से यूएन का इंजन। लेकिन हाँ, इन पर अक्सर ब्यूरोक्रेसी और इनएफिशिएंसी के आरोप भी लगते हैं।
और तीसरा है बजट। पैसा कहाँ से आता है? यहाँ भी पॉलिटिक्स है।
बिल्कुल, जो देश ज्यादा पैसा देता है जैसे अमेरिका, उसका प्रभाव भी ज्यादा रहता है। कई बार फंडिंग को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए।
और फिर वो बॉडी है जिसका जिक्र बार बार आता है, सुरक्षा परिषद। 5 पर्मानेंट सदस्य वीटो वाले और 10 नॉन पर्मानेंट चुने हुए सदस्य। इसके पास शांति लागू करने के लिए असल में काफी ताकतें हैं, चार्टर के तहत सैंक्शंस लगाना, मिलिट्री एक्शन ऑथोराइज करना। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, इसका रिकॉर्ड बहुत मिला जुला है। कभी इसने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई, जैसे 1991 में कुवैत को इराक से आज़ाद कराने के वक्त, उसे कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। पर रवांडा में 1994 में या सरेब्रेनिका में 1995 में जो नरसंहार हुए, उन्हें रोकने में ये बुरी तरह नाकाम रहा।
क्यों, क्या वजह थी?
सीधी सी बात, पॉलिटिकल विल की कमी। सदस्य देशों में, खासकर ताकतवर देशों में, एक्शन लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं थी। कोई अपने सैनिक भेजना नहीं चाहता था या खतरा मोल नहीं लेना चाहता था।
और फिर 2003 में इराक पर हमला, वो तो सुरक्षा परिषद की मर्जी के बिना ही हुआ था ना?
हाँ, वो यूएन के अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना कितना मुश्किल काम है, और ये सिर्फ यूएन के चाहने भर से नहीं होता।
पावर पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर निकले तो यूएन का एक और अहम हिस्सा है जनरल असेंबली। ये शायद यूएन का सबसे डेमोक्रेटिक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हर देश का एक वोट है। अमेरिका हो या कोई छोटा सा द्वीप देश, सबका वोट बराबर।
जी हाँ, यहाँ कोई वीटो नहीं। हालांकि इसके प्रस्ताव लीगली बाइंडिंग नहीं होते, पर इसे सिर्फ एक टॉकिंग शॉप कहकर खारिज करना भी ठीक नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंच है अपनी बात रखने का, बहस करने का।
हाँ, और इसने कई ग्लोबल नॉर्म्स सेट करने में मदद की है, जैसे 1948 का मानवाधिकारों का घोषणा पत्र UDHR, और जो विकासशील देश है उनकी आवाज को बुलंद करने में, जैसे G77 ग्रुप के जरिए, इसका बड़ा रोल रहा है।
और अब आते हैं यूएन के उस काम पर जिस पर शायद सबसे कम ग्लैमर है, लेकिन जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधे पड़ता है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट। यूएन की कितनी सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, WHO हेल्थ के लिए, यूनिसेफ बच्चों के लिए, WFP भूखलड़ी से लड़ने के लिए, UNDP विकास के लिए, और भी बहुत सी।
हाँ, ये वो काम है जो चुपचाप चलता रहता है, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा के खिलाफ टीके लगवाना, स्कूलों में मदद करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे लक्ष्य तय करना।
बिल्कुल, ये यूएन का वो चेहरा है जो ज्यादातर कामयाब रहा है। ये लोगों की जिंदगी में सीधे तौर पर फर्क ला रहा है। जब हम यूएन की नाकामियों की बात करते हैं तो हमें इस पहलू को भी याद रखना चाहिए। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स से परे कोऑपरेशन असल में मुमकिन है और काम करता है।
मानवाधिकारों के क्षेत्र में भी, जैसा हमने UDHR का जिक्र किया, यूएन की भूमिका बुनियादी रही है। लेकिन यहाँ भी वही पुराना तनाव देखने को मिलता है, एक तरफ मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का मैंडेट और दूसरी तरफ सदस्य देशों के घरेलू मामलों में दखल न देने का सिद्धांत।
हाँ, वो चार्टर का आर्टिकल 27, ये एक बहुत नाजुक संतुलन है जो साधना हमेशा मुश्किल रहा है।
और इसी से जुड़ा एक नया कॉन्सेप्ट आया है पिछले कुछ सालों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट या R2P।
जी, R2P, इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर कोई सरकार अपने ही लोगों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार कर रही है, तो सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता कोई ढाल नहीं बन सकती। तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हस्तक्षेप करे, उन लोगों को बचाए।
2011 में लीबिया में जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था वो इसी सिद्धांत के तहत जस्टिफाई किया गया था।
हाँ, लेकिन इस सिद्धांत को लेकर भी काफी विवाद है। कब दखल देना सही है, कौन तय करेगा, कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, ये सब सवाल उठते हैं।
और आखिर में किताब यूएन के सामने जो आज की चुनौतियां हैं और सुधार की जो बात होती है उस पर आती है, जैसे अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई, फंडिंग की कमी, ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम और सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म। आज की दुनिया 1945 से बहुत अलग है।
बिल्कुल, भारत है, ब्राजील है, जर्मनी, जापान है, अफ्रीका का कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या काउंसिल आज की जियोपॉलिटिकल सच्चाइयों को दिखाता है?
सवाल तो एकदम जायज है, पर हानिमा की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं बंधाते।
हाँ, उनका मानना है कि जो मौजूदा P5 हैं, वो शायद ही अपनी वीटो पावर छोड़ने या उसे डाइल्यूट करने पर आसानी से राजी होंगे, तो बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की संभावना थोड़ी कम लगती है। यूएन जैसा है, शायद उसमें धीरे धीरे अनुकूलन होता रहेगा, लेकिन एकदम से बड़ा बदलाव मुश्किल है।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला तो मेरे हिसाब से यूएन का यही विरोधाभासी नेचर है कि ये जरूरी भी है और अक्सर बेअसर भी लगता है। इसे शायद अपरिहार्य अप्रभाविता कह सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल इनइफेक्टिवनेस। दुनिया को इसकी जरूरत तो है, पर यह खुद सदस्य देशों की, खासकर P5 की मर्जी पर बहुत ज्यादा निर्भर है।
बिल्कुल, और दूसरी बड़ी बात है राज्यों की संप्रभुता की प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ स्टेट सॉवरेंटी। ये बात बार बार सामने आती है। यूएन राष्ट्रों का संगठन है, राष्ट्रों से ऊपर की कोई चीज नहीं है, आखिरी फैसला देशों का ही होता है, यूएन का नहीं। वीटो पावर इसी हकीकत का सबसे बड़ा प्रतीक है।
हाँ, यूएन सलाह दे सकता है, मदद कर सकता है, एक मंच दे सकता है, पर हुकुम नहीं चला सकता।
तीसरा, यूएन दुनिया का आईना है, यूएन एज अ मिरर। जैसी दुनिया की पॉलिटिक्स होगी वैसा ही यूएन का हाल होगा। जब दुनिया में सहयोग बढ़ता है तो यूएन ज्यादा एक्टिव दिखता है, जैसे 90s में हुआ। जब बड़ी ताकतों में टेंशन बढ़ती है, जैसा आजकल दिख रहा है, तो यूएन में भी वही दरारें दिखने लगती हैं।
ये दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है, उसे बनाता नहीं है।
सही कहा।
और चौथी बात, जिसे हम अक्सर शायद उतना महत्व नहीं देते, नॉर्म्स यानी मानकों की ताकत और यूएन का वो चुपचाप वाला काम, पावर ऑफ नॉर्म्स एंड क्वाइट वर्क। यूएन सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स नहीं है, इसने मानवाधिकार, विकास, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर दुनिया भर में एक सोच बनाने का, नॉर्म सेट करने का काम किया है।
जी हाँ, UDHR या SDGs जैसे विचार भले ही लीगली बाइंडिंग ना हो, पर इन्होंने सरकारों पर, कंपनियों पर, पब्लिक ओपिनियन पर गहरा असर डाला है। और साथ ही वो जो WHO, यूनिसेफ जैसी एजेंसीज का जमीनी काम है, वो तो लगातार जिंदगियां बेहतर कर रहा है।
अब जरा हानिमाकी के कुछ मुख्य तर्कों को, उनके विचारों के सार को एक बार फिर देख लेते हैं।
हाँ, वो बातें हैं जो किताब पढ़ने के बाद खास तौर पर याद रह जाती हैं।
पहली, जिसका सार है, यूएन कोई विश्व सरकार नहीं है, ये सदस्य देशों के हाथ में एक औजार है, इसलिए इसका प्रदर्शन इसकी अपनी नाकामी नहीं बल्कि सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा शक्ति या उसकी कमी को दिखाता है। मतलब दोष यूएन को देने से पहले देशों को खुद को देखना चाहिए।
बिल्कुल। दूसरी बात, वीटो पावर यूएन का मूल पाप भी है और इसकी जीवन रेखा भी। ये बड़ी ताकतों को जवाबदेही से बचाता है, पर यह भी सुनिश्चित करता है कि वो सिस्टम से बाहर ना जाएं, जैसा लीग ऑफ नेशंस के साथ हुआ था। ये एक मुश्किल पर शायद जरूरी समझौता है।
तीसरा, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, सुरक्षा परिषद के ड्रामे सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन यूएन का सबसे गहरा और टिकाऊ असर अक्सर स्वास्थ्य, विकास, मानवीय राहत जैसे क्षेत्रों में उसकी एजेंसियों के शांत, निरंतर चलने वाले काम में पाया जाता है।
यह हमें बड़े शोर से परे देखने की बात कहता है।
हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है।
और चौथा, बहुत ही प्रैक्टिकल, यूएन दुनिया को वैसा दिखाता है जैसी वो है, ना कि जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। ये हमें यथार्थवादी बनाता है। यूएन कोई जादू की छड़े नहीं है, बल्कि दुनिया की मुश्किलों से जूझने का एक मंच है बस।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है?
मेरे ख्याल से पहली चीज तो है मीडिया को बेहतर समझना। जब हम खबर पढ़ें कि यूएन फेल हो गया, तो हम एक पल रुककर सोच सकते हैं, क्या सच में यूएन फेल हुआ, या उसके पावरफुल सदस्य देश किसी बात पर सहमत नहीं हो पाए।
हाँ, ये नजरिए का फर्क है। इससे हमें असल समस्या कहाँ है ये समझने में मदद मिलती है और हम फालतू के निराशावाद से बचते हैं। दूसरा, ग्लोबल इंटरकनेक्शन को समझना। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या कोई महामारी, ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कितने जुड़े हुए हैं। कोई भी देश अकेले इन समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। यूएन अपनी सारी कमियों के साथ मिलकर काम करने का हमारे पास सबसे बड़ा ढांचा है।
जी, एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, हाँ, उसे प्रैक्टिकल रूप में दिखाता है।
तीसरा, अपने देश की विदेश नीति को समझना। हम बेहतर समझ पाते हैं कि भारत क्यों सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए इतनी कोशिश कर रहा है या क्यों अमेरिका का यूएन के साथ रिश्ता इतना उतार चढ़ाव वाला रहता है।
हाँ, ये सब राष्ट्रीय हित, पावर बैलेंस, दुनिया में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद है।
और चौथा, सॉफ्ट पावर की अहमियत को समझना। यूएन का असर सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर से नहीं होता, इसका बहुत बड़ा असर विचारों को, नॉर्म्स को, जैसे मानवाधिकार, सतत विकास बढ़ावा देने से होता है। ये धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे कानून, कंपनियों के काम करने के तरीके, इन सब को प्रभावित करते हैं।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि बदलाव सिर्फ ताकत या पैसे से ही नहीं आता। और हाँ, ये उन दो एक्सट्रीम विचारों को भी काटता है कि यूएन या तो एकदम बेकार है या फिर कोई खतरनाक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने जा रहा है। हकीकत कहीं बीच में है।
तो मेरे लिए इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख है, वो यूएन का यही पैराडॉक्सिकल नेचर है कि वो एक ही समय में इतना जरूरी भी है और कई बार इतना बेबस भी लगता है। और ये भी कि कैसे उसकी वो एजेंसियां, जिनके बारे में कम बात होती है, असल में कितना ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर रही हैं। जरूरी है कि हम एक बैलेंस्ड व्यू रखें, न भोला आदर्शवाद न कड़वा यथार्थवाद।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि यूएन दुनिया का आईना है। यह हमारी दुनिया की जटिलताओं, हमारे सहयोग और हमारे मतभेदों सबको दिखाता है। यह परफेक्ट नहीं है, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन फिर भी यह टिका हुआ है, अडाप्ट कर रहा है। यह शायद ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा या शायद इकलौता संगठित प्रयास है। हानी माकी की किताब हमें इसी प्रैक्टिकल नजरिए से यूएन को देखने में मदद करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।